3:30 बज चुके हैं। आप सब प्रवचन निर्देशिका की क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और इसके अंदर सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। सम्यक दर्शन क्या होता है? सम्यक दर्शन किसको हो सकता है? सम्यक कैसे होता है? इन सब बातों की जानकारी में प्राथमिक स्तर पर बताया गया। सम्यक दर्शन भव्य जीवों को होता है, सम्यक दर्शन अभव्य जीवों को नहीं होता। अब यहाँ सम्यक की उत्पत्ति के जो कारण बता रहे हैं, इसमें एक चीज कहा है कि कारण और करण दो चीजें हैं। क्या? कारण और करण दो चीजें हैं, जिसके होने पर कार्य होवे अथवा नहीं भी होवे, लेकिन जिसके बिना नहीं हो सकता वह कारण है। जैसे बताया कि मुनि मुद्रा को धारण करने पर मोक्ष हो भी जावे नहीं भी हो, मान लो कहीं कमी रह गई नहीं भी हो, लेकिन बिना मुनि मुद्रा को स्वीकार किए कोई भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये क्या है? ये कारण है। और एक होता करण। करण माने जिसके होने पर नियम से कार्य होगा ही होगा, वह कारण ना होकर के वो कह रहा था करण। तो ऐसे करण परिणाम जो बिल्कुल साधकतम माने अंतिम स्टेज का जो कारण है वह कहलाता करण। जब बिल्कुल मोक्ष प्राप्त करने के एकदम निकट है, तुरंत मोक्ष प्राप्त होने वाला है, वह क्षण करण कहलाता है। तो यहाँ पर लब्धि में भी करण लब्धि को भी बताएंगे, अधा करण, अपूर्ण करण, अनिवृत्ति करण, इन करण लब्धि के भी भेद बताएंगे। तो जिसके होने पर नियम से सम्यक रूप कार्य प्रकट हो जाता है। तो आप इसका स्वाध्याय करके सब चीजों को जानिएगा। यहाँ पर मुख्य रूप से बता रहे हैं कि जिस प्रकार से हमें कुंद कुंद आचार्य के वचन प्रमाण हैं, उसी प्रकार से श्री गुणधर आचार्य, श्री पुष्पदंत और भूतबली आचार्य के वचन भी प्रमाण होने चाहिए, क्योंकि इस युग में सबसे पहले कसाय पाहुल ग्रंथ लिखा गया। कसाय पाहुल माने उसकी टीका का नाम है जय धवला, और षटखंडागम, षटखंडागम जिसकी टीका का नाम है धवला। तो धवला, जय धवला के नाम से ये जो ग्रंथ वर्तमान में प्रकृति को प्राप्त है, श्रुत पंचमी के दिन विशेष रूप से इनकी पूजा अर्चना की जाती है। उनके लिए कहा कि उन शास्त्रों के वचनों को प्रमाण मानना है और उन शास्त्रों को रचने वाले जो गुणधर आचार्य हैं, कसाय पाहुल के रचनाकार गुणधर आचार्य और षटखंडागम के रचनाकार हैं पुष्पदंत और भूतबली, और इन दोनों की टीकाएं की हैं श्री वीर सेन आचार्य ने, धवला, जय धवला के नाम से। तो ये द्वादशांग के अंश वर्तमान में माने जाते हैं। आज द्वादशांग श्रुत उपलब्ध नहीं है और ना ही द्वादशांग को कोई लिपिबद्ध कर सकता, माने द्वादशांग को लिख नहीं सकता। तो द्वादशांग के अंश रूप ये सिद्धांत ग्रंथ हैं, जैसा कि उन्होंने कसाय पाहुल नाम के ग्रंथ के अंदर कहा है, पूर्वम्मि पंचमम्मिदु दशमे बत्थुम्मि पाहुडे तदीये पेज्जम पाहुडम्मिदु हवदि कसायाण पाहुडम नाम। पेज नंबर 10 पर मैं समझती हूँ अब तक बहुत सारे लोगों तक प्रवचन निर्देश का पुस्तक जरूर डाक से पहुंच गई होगी, और नहीं जिनके पास पहुंची है उनके पास पीडीएफ पहुंचाया गया है, तो आप लोग उसको खोल करके अध्ययन कीजिएगा। इसमें पेज नंबर 10 बताया है कि जो 14 पूर्वों में से पांचवा ज्ञान प्रवात पूर्व है, ज्ञान प्रवात पूर्व की 10वीं वस्तु है जो उसमें पेज पाहुर नाम का तीसरा चैप्टर है, अधिकार है, उससे कसाय पाहुर नाम ग्रंथ उत्पन्न हुआ है। यानी कि गुणधर आचार्य ने ज्ञान प्रवात पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया, उसकी 10वीं वस्तु से पेज पाहुड़ नाम के तृतीय अधिकार से उन्होंने कसाय पाहुड़ सूत्र को अपने को उपलब्ध कराया। यानी वे महान ज्ञानी थे और अपने ज्ञान के आधार पर उन्होंने जिस सिद्धांत ग्रंथ का नाम लिखा जिस सिद्धांत ग्रंथ को लिखा है उसका नाम दिया कसाय पाहुड़। और उसके अंदर बहुत सारी कसाय की प्रवृत्तियों का वर्णन किया है कि किस कसाय के निमित्त जीव कौन से कर्म का बंध करता है। इसी प्रकार बताया षटखंडागम सिद्धांत ग्रंथ जो है वह भी पूर्व में द्वितीय अग्रणी पूर्व में चयन लब्धि नाम के पांचवे अर्थाधिकार के चौथे प्रावृत से निकला हुआ है। इसका नाम है कर्म प्रकृति महाप्रावृत। देखो ये सिद्धांत ग्रंथ जो लिखे गए इनमें विशेष रूप से कर्मों का सुंदर चित्रण है। थोड़ा भाषा कठिन है लेकिन उसके बाद आचार्य वीरसेन स्वामी ने प्राकृत और संस्कृत को मिलाकर के जो टीका की है कुछ सरल हुआ और फिर भी आज के लोगों के लिए कठिन पड़ता था, इसलिए आज गणी ज्ञानमती माता जी ने दूसरी टीका लिख दी, धौला छोड़ करके दूसरी टीका लिखी जिसका नाम है सिद्धांत चिंतामणि टीका। और उसमें प्रकरण को काफी सरल किया गया, अन्य तमाम ग्रंथों के कोटेशन उदाहरण उसमें लेकर के और ग्रंथ के सार को षटखंडागम के सार को बताया गया। इसमें पांच खंडों में 6841 सूत्र हैं। कितने सूत्र? 6841 सूत्र। और उन सारे सूत्रों पर 3200 पृष्ठ की टीका पूज्य ज्ञानमती माता ने संस्कृत की टीका लिखी सिद्धांत चिंतामणि टीका, जिसका हिंदी अनुवाद करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमने ये अनुभव किया कि पग पग पर आचार्य देव ने सूत्रों के माध्यम से जिस चीज को बताया उसे टीका में खोला गया कि हम किस प्रकार से आत्मा को पवित्र करने के लिए उसमें से कषाय को कम करके और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करें। ये यहाँ पर प्रकरण इसीलिए आया कि सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है भाई, जब किसी के ऊपर मैल लगा हुआ है, जब मैल को साफ करेंगे तभी कपड़ा साफ होगा। इसी प्रकार से आत्मा पर कसाय का मैल, पापों का मैल, पुण्यों का मैल, ये सब लगा हुआ है, तो उसको उस मैल को दूर करके तब जा करके अपना सम्यक दर्शन निर्मल होगा। देखो एक बार की बात है कि एक घर के अंदर सायंकाल में सब लोग बैठ करके एक साथ परिवार के लोग मनोरंजन कर रहे थे। अकस्मात क्या होता है, लाइट चली गई। तो आज तो इन्वर्टर है, आज तो तरह तरह के साधन है और उस समय इतने साधन नहीं थे। तो माँ कहती है बच्चे से, जाओ बेटा लालटेन जला लो, तुम्हें लालटेन जलाना आता है, तुम्हारे घर में लालटेन है। तो मतलब है कभी प्राचीन चीजों को आपके दादी बाबा ने सुरक्षित रखा है। तो बच्चे से कहा गया जाओ लालटेन जला दो, बच्चा लालटेन जला गया जलाने का, लेकिन किसी तरह उससे लालटेन तीली पे तीली वो फूकता गया लेकिन लालटेन नहीं जली। माँ बड़ी झुंझलाई हुई, लालटेन के पास जाती है, शीशे को उठाती है और उसकी बत्ती पर काला काला गुल चढ़ा हुआ था। काला काला को क्या कहते हैं, गुल कहते हैं, गुल चढ़ा हुआ था। तो उसने गुल को झाड़ा और फिर एक ही तीली में लालटेन जली। बच्चे को बड़ा गुस्सा आया कि माँ आपने तो इतनी जल्दी लालटेन जला दी। माँ ने बताया बेटा इसके ऊपर ये काला काला जो चढ़ा हुआ है ना, जब बत्ती जल जाती है तो काला काला हो जाता है और उस काली को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक बत्ती नहीं चलेगी। तो ये एक उदाहरण है। ऐसे ही आत्मा के ऊपर काली 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 माँ, कर्मों की, पापों की, कायों की काली माँ जो चढ़ी है, तो जब गुरु कहते हैं कि आप काली माँ को हटाएं, हमसे नहीं हटती। और कभी कभी गुरुओं का एक शब्द मिल जाता है और बस वो काली माँ हट जाती है और ज्ञान की रोशनी अपनी चल जाती है, माने ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसीलिए इन किताबों को लिखा है कि माता जी कहती है कि पता नहीं कौन सा शब्द आपके आत्मा के अंदर ज्ञान की रोशनी को पैदा कर दे। तो इसके अंदर बताया कि धौला जय धौला की टीका के अंदर आचार्य वीरसेन स्वामी ने सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने के कई कारण बताए। और ये भी बताया कि चारों कलियों में सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है, नरक गति में भी, तिर्यंच गति में भी, मनुष्य गति में भी और देव गति में भी हो सकता है सम्यक दर्शन। और उसके कारण बताए हैं कि नरक गति में यदि सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा कैसे होगा, तो उसके लिए कारण क्या है। सबसे बताया कि सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने के लिए अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब जिसने अनादि काल से कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, ऐसा अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कोई भव्य जीव, संगी, पंचेंद्री, व्यापक होना चाहिए, तब ऐसा जीव कोई भी गति में होगा तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। नरक में वो भी पंचेंद्री पर्याप्तक है, माने उनमें जानने समझने की शक्ति है, उनके सारे शरीर के अवयव पूर्ण है, शरीर के अंग उपांग सब, और सभी है उनमें उनमें जानने समझने की शक्ति है, तो ऐसे जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिया कि भाई नरक में कैसे सम्यक दर्शन हो सकता है, नरक में तो रात दिन केवल मरना, लड़ना, काटना, तेल में तलना, कढ़ाई में तलना, खूब आरे से काट देना, यही सब चलता है। नरक के दुखों का वर्णन किया है कि बिच्छू सहस दसे नहीं तिसो, तहां भूमि पर सत दुखी सो, कि भूमि को छूते ही इतना कष्ट होता है जैसे 1,000 बिच्छू भी काट लें एक साथ तो भी जितना दर्द नहीं होता, कष्ट नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा कष्ट नरक की भूमि का स्पर्श करने मात्र से होता है। तो नरक है, वहां पर एकदम औंधे मुंह ऊपर बिल से एकदम गिरते हैं और जा करके एकदम गेंद जैसा उछल जाते हैं, और फिर वहां मार धाड़ आपस में, कोई भी नारकी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को ना मारता, सब एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न हो, ये एक प्रश्न उठता है। तो कह रहे हैं कि धवला की छठी पुस्तक माने षट्खंडागम की जो धवला टीका है उसकी छठी पुस्तक के अंदर सम्यक्त के कारणों का सुंदर विवेचन जो किया है, उन कारणों को यहाँ पर पूज्य मातेई ने कोट किया है, क्योंकि प्रूफ चाहिए। हम अपने मन से कुछ भी कह सकते हैं, पर प्राचीन आचार्यों ने जो प्रूफ दिए हैं तो उसमें कहा कि षट्खंडागम की छठी पुस्तक देखो, नारकी मिथ्या दृष्टि जीव तीन कारणों से प्रथम सम्यक्त को उत्पन्न करते हैं। प्रथम सम्यक्त माने प्रथमोपशम सम्यक्त, जो पहली बार सम्यक्त होता है, एक बार पहली बार होता है और तुरंत अंतर मुहूर्त के बाद खत्म हो जाता है, इसको कहते हैं प्रथमोपशम। तो जिसने जिस नारकी ने इस पहले कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, पहली बार प्राप्त करने चाह रहा है, उसका नाम है प्रथम सम्यक्त या प्रथमोपशम सम्यक्त। तो उस सम्यक्त को उत्पन्न करने में तीन कारण हैं, तीन कारण लिए हैं कि प्रथम सम्यक्त उत्पत्ति में तीन कारण, क्यों कैसे तीन कारण हैं जिनसे कि उत्पन्न हो सकता है, ऐसी क्या बात है। तो कहा कि जैसे कोई घड़ा है, अब घड़े को एक ईंट से या मुद्गर से उसको फोड़ दिया, जब फोड़ा तब उसके खप्पर आदि वो टुकड़े टुकड़े हो गए। तो जैसे एक निमित्त मिलता है मुद्गर से या ईंट से या किसी पत्थर से, तोड़ करके ही उसके टुकड़े होते हैं, तो उत्पत्ति किसकी हुई, घड़ा है या कोई भी सामान है उसको तोड़ा तो उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरे खप्पर उत्पत्ति कैसे हुई, मारने से। तो ऐसे ही कुछ कारण मिलते हैं तब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है, यानी आत्मा पर चोट पहुंचाई जाती है कि अब कर्म के मैल को काटना है, तोड़ना है। तो कहते हैं कि फिर वे तीन कारण कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से तीन कारण हैं कि नरक में भी जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। तो कहा जाति स्मरण, पेज नंबर 11 खोलिएगा, समाधान में दिया है, जाति स्मरण, धर्मोपदेश और वेदना, वेदनानुभव, इन तीन कारणों से नारकी जीव को सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। इसमें शंका समाधान के माध्यम से बताया है, तो उसको आप पढ़िएगा। तो धर्मोपदेश सुनकर के सम्यक दर्शन हो जाए ये ठीक है, लेकिन जाति स्मरण का कारण समझ में नहीं आया, क्योंकि हर नारकी को जाति स्मरण होता। जाति स्मरण का मतलब पूर्व भव की बातें याद आ जाना। तो जितने भी नारकी होते हैं और जितने भी देवता होते हैं भी जहां से जाते हैं उनको पहले भव का सब ज्ञान रहता है। तो जाति स्मरण से अगर सम्यक दर्शन होता है तो सबको ही सम्यक दर्शन हो जाए, सारे नारकियों को, सारे नारकियों को अपने पूर्व भव का ज्ञान होता है। तो समाधान किया, नहीं ऐसा आप मत कहिए, क्योंकि सामान्य रूप से भव स्मरण के द्वारा सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती, यानी सबको जो पिछले भव का स्मरण रहता है उससे नहीं होती। किंतु यदि किसी ने पूर्व भव में धर्म बुद्धि से कुछ अनुष्ठान किए थे और वे वास्तविक धर्म रूप ना होने से उनका फल नहीं मिला था, ये जान लिया कि मैंने अच्छा काम तो किया था लेकिन उसमें बहुत दोष आए थे, तो दोषों को जान करके एकदम प्रायश्चित का भाव, मैंने क्यों दोष लगाए थे और अब मैं आगे दोष नहीं लगाऊंगा, ऐसी बात चिंतन करने से उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। कि भाई जब कोई ज्यादा प्रायश्चित करता है मन के अंदर तो उसको अच्छा ज्ञान हो जाता, उसकी गलतियां माफ कर दी जाती है। इसी प्रकार से आत्मा को ऐसे जब कोई नारकी जीव सोचता है कि मैं इस गलती को करने से मैं नरक में आया, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, तब ऐसी स्थिति में जब बुद्धि अच्छी हो जाती है तब उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। ऐसी बुद्धि सब नारकियों के अंदर नहीं आती, उनका तो काम है मारना काटना मरना मारना, यही कार्य होता है। उनमें से किसी किसी नारकी को ऐसा हो जाता है कि हम अब आगे गलती नहीं करेंगे। आपको एक तीन कारणों में से एक जो जाति स्मरण कारण है उससे नारकियों को सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है, सब नारकियों को नहीं किसी किसी को, ये बताया है। आगे दो कारणों को हम और लेंगे। तो आज के स्वाध्याय का सार ये समझना है, चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है और उसके साथ शर्त ये है, भव्य होना चाहिए, पंचेंद्री होना चाहिए, संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, पंचेंद्री होना चाहिए, तब जाकर के उनके अंदर चारों गतियों में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता आती है। सर्वप्रथम नरक गति को लिया है कि वहां के दुखों को भोगते हुए भी किस प्रकार से सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आगे ये जीव नरक से निकल करके और मनुष्य गति को प्राप्त कर सकता है।